नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, फर्म्स ऑफ एंडियरमेंट। राजेंद्र सिसोदिया की व्यवसाय और प्रबंधन पर केंद्रित पुस्तक है, जो इस धारणा को चुनौती देती है कि कंपनी का मुख्य और लगभग एकमात्र दायित्व शेयरधारकों के लिए अल्पकालिक लाभ बढ़ाना है। पुस्तक का तर्क है कि जिन कंपनियों का स्पष्ट उच्चतर उद्देश्य होता है और जो ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदायों, पर्यावरण तथा निवेशकों के हितों को साथ लेकर चलती हैं, वे लंबे समय में अधिक टिकाऊ आर्थिक परिणाम भी प्राप्त कर सकती हैं। लेखक ऐसी संस्थाओं को फर्म्स ऑफ एंडियरमेंट कहते हैं, अर्थात वे कंपनियां जिनके प्रति अलग अलग हितधारकों में भरोसा, सम्मान और स्वैच्छिक निष्ठा पैदा होती है। यह केवल कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का समर्थन नहीं करती, बल्कि उद्देश्य, संस्कृति, नेतृत्व और व्यावसायिक रणनीति के एकीकरण का मॉडल प्रस्तुत करती है। विभिन्न प्रसिद्ध कंपनियों के उदाहरणों और तुलनात्मक वित्तीय प्रदर्शन के माध्यम से पुस्तक यह जांचती है कि मानवीय मूल्यों को व्यापार के केंद्र में रखने का व्यावहारिक और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ क्या हो सकता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लाभ से परे उच्चतर उद्देश्य को रणनीति का आधार बनाना। पुस्तक का पहला केंद्रीय विचार यह है कि लाभ कंपनी के जीवित रहने और निवेश के लिए आवश्यक है, लेकिन वह संगठन के अस्तित्व का पर्याप्त उद्देश्य नहीं है। उच्चतर उद्देश्य से आशय ऐसी उपयोगी भूमिका से है जो कंपनी अपने ग्राहकों, समाज या किसी व्यापक मानवीय आवश्यकता के लिए निभाती है। यह उद्देश्य केवल विज्ञापन की पंक्ति या वार्षिक रिपोर्ट का कथन नहीं होना चाहिए। इसका प्रभाव उत्पाद चयन, मूल्य निर्धारण, भर्ती सेवा मानकों, आपूर्तिकर्ता संबंधों और कठिन परिस्थितियों में लिए जाने वाले निर्णयों पर दिखना चाहिए। लेखक के अनुसार, स्पष्ट उद्देश्य कर्मचारियों को उनके दैनिक काम और बड़े परिणाम के बीच संबंध समझने में मदद करता है। ग्राहकों के लिए भी यह भरोसे का आधार बन सकता है, बशर्ते कंपनी का आचरण उसके घोषित उद्देश्य से मेल खाए। पुस्तक लाभ और उद्देश्य को विरोधी नहीं मानती। इसका तर्क यह है कि जब उद्देश्य संगठन को बेहतर निर्णय, अधिक विश्वसनीय संबंध और दीर्घकालिक प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम करता है, तब लाभ उस व्यवस्था का परिणाम बन सकता है। फिर भी पुस्तक का मॉडल यह मांग करता है कि नेतृत्व उद्देश्य को सुविधाजनक समय में नहीं, बल्कि लागत या तात्कालिक लाभ के दबाव के समय भी निर्णय की कसौटी बनाए। दूसरा, हितधारक एकीकरण केवल शेयरधारक प्राथमिकता का विकल्प नहीं। फर्म्स ऑफ एंडियरमेंट का विशिष्ट योगदान हितधारक संबंधों को परोपकारी खर्च के बजाय मूल्य निर्माण की परस्पर जुड़ी व्यवस्था के रूप में देखना है। पुस्तक के अनुसार ग्राहक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय समुदाय, निवेशक और पर्यावरण अलग अलग दबाव समूह नहीं है, जिनमें से किसी एक को लाभ देने पर दूसरे का नुकसान अनिवार्य हो। बेहतर ग्राहक अनुभव से निष्ठा और दोहराई खरीद बढ़ सकती है। कर्मचारियों को सम्मान, विकास और निर्णय की उचित स्वतंत्रता मिलने पर सेवा की गुणवत्ता तथा टिकाव बेहतर हो सकता है। आपूर्तिकर्ताओं के साथ भरोसेमंद संबंध गुणवत्ता, नवाचार और आपूर्ति की विश्वसनीयता को मजबूत कर सकते हैं। इस दृष्टि में निवेशक भी महत्वपूर्ण है, किंतु उन्हें एकमात्र स्वामी नहीं माना जाता। एकीकरण का अर्थ हर हितधारक को हर समय समान लाभ देना नहीं है। वास्तविक निर्णयों में टकराव होंगे, जैसे कम कीमत और उचित आपूर्तिकर्ता भुगतान के बीच तनाव। पुस्तक का आग्रह है कि प्रबंधन इन तनावों को शून्य योग सौदे की तरह न संभाले, बल्कि दीर्घकालिक समाधान खोजे। इसलिए संवाद, पारदर्शिता और संबंधों में निरंतर निवेश इस मॉडल की संचालनात्मक आवश्यकताएं हैं। तीसरा, सचेत नेतृत्व में अधिकार के साथ सहानुभूति और जवाबदेही। पुस्तक नेतृत्व को केवल लक्ष्य निर्धारण, नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन का विषय नहीं मानती। सचेत नेतृत्व का आशय ऐसे नेताओं से है जो अपनी शक्ति के प्रभाव को समझते हैं, संगठन के उद्देश्य के प्रति विश्वसनीय रहते हैं और अनेक हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण में सहानुभूति का अर्थ निर्णयों में ढिलाई नहीं है, बल्कि नेता को यह समझना होता है कि लागत घटाने, वेतन नीति, ग्राहक शिकायत या आपूर्ति अनुबंध जैसे निर्णय लोगों के व्यवहार और विश्वास को कैसे प्रभावित करेंगे। पुस्तक के उदाहरणों का व्यापक संकेत यह है कि जब शीर्ष नेतृत्व अल्पकालिक निजी लाभ, अत्यधिक पदानुक्रम या भय पर आधारित प्रबंधन से दूरी रखता है, तो संगठन में अधिक खुला संवाद संभव होता है। साथ ही नैतिक भाषा तभी विश्वसनीय बनती है जब नेतृत्व के प्रोत्साहन, वेतन संरचना और व्यवहार उससे मेल खाते हों। सचेत नेतृत्व की चुनौती यह है कि नेता को करुणा और प्रदर्शन दोनों को साथ रखना पड़ता है। उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं, पर निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, समझने योग्य और उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार पुस्तक नेतृत्व को व्यक्तित्व के आकर्षण से अधिक संस्थागत भरोसा बनाने की क्षमता के रूप में प्रस्तुत करती है। चौथा, संस्कृति और प्रबंधन प्रणालियां उद्देश्य को रोजमर्रा के व्यवहार में बदलती हैं। पुस्तक के अनुसार घोषित मूल्य तब तक सीमित रहते हैं जब तक वे संगठन की संस्कृति और प्रबंधन प्रणालियों में नहीं उतरते। संस्कृति यहाँ उन साझा अपेक्षाओं का नाम है जो तय करती हैं कि कर्मचारी ग्राहक से कैसे बात करेंगे, गलती की सूचना देने में कितना सुरक्षित महसूस करेंगे, विभाग आपस में कैसे सहयोग करेंगे और प्रबंधक लोगों के विकास को कितना महत्व देंगे। फर्म्स ऑफ एंडियरमेंट में कर्मचारी अनुभव को ग्राहक अनुभव से जोड़ा गया है। यदि कर्मचारियों को केवल लागत समझकर कम वेतन, सीमित प्रशिक्षण और कठोर नियंत्रण के तहत रखा जाए तो असाधारण सेवा की अपेक्षा कमजोर पड़ सकती है। इसके विपरीत उपयुक्त भर्ती, प्रशिक्षण, सम्मानजनक पारिश्रमिक, आंतरिक पारदर्शिता और सीमित स्तर तक निर्णय अधिकार देने से कर्मचारी ग्राहक की समस्या का समाधान तेजी से कर सकते हैं। यह कोई स्वचालित सूत्र नहीं है। अधिक अधिकार के साथ स्पष्ट मानक, जिम्मेदारी और सीखने की व्यवस्था भी चाहिए। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि संस्कृति को अलग कार्यक्रम मानना पर्याप्त नहीं है। मापदंड, पदोन्नति, पुरस्कार, बैठकों की भाषा और वरिष्ठों का आचरण सभी यह तय करते हैं कि उद्देश्य वास्तव में जीवित है या केवल औपचारिक घोषणा। इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन धीमा, निरंतर और नेतृत्व द्वारा प्रदर्शित प्रक्रिया है। अंत में वित्तीय बेहतर प्रदर्शन का दावा और उसे समझने की सावधानी। पुस्तक की प्रभावशाली विशेषता यह है कि वह उद्देश्य और हितधारक केंद्रित कंपनियों को केवल नैतिक आदर्श के रूप में नहीं रखती बल्कि उनके वित्तीय प्रदर्शन की तुलना भी प्रस्तुत करती है। इसमें चुनी गई कंपनियों के दीर्घकालिक शेयर प्रतिफल को व्यापक बाजार और अन्य चर्चित कंपनी समूहों से बेहतर बताया गया है। इस प्रमाण का मुख्य संदेश यह है कि ग्राहक प्रेम, कर्मचारी निष्ठा और प्रतिष्ठा जैसी अमूर्त लगने वाली चीजें आर्थिक मूल्य से अलग नहीं है। वे कम ग्राहक पलायन, मजबूत ब्रांड, बेहतर सेवा, नवाचार और संकट के समय अधिक भरोसे के रूप में दिखाई दे सकती हैं। फिर भी इस निष्कर्ष को सावधानी से पढ़ना जरूरी है। सफल कंपनियों के चयन के बाद उनके गुणों को पहचानना यह निश्चित नहीं करता कि उन्हीं गुणों को अपनाने वाली हर कंपनी समान प्रतिफल पाएगी। उद्योग, समय, पूंजी संरचना, प्रतिस्पर्धा और प्रबंधन क्षमता भी परिणाम बदलते हैं। पुस्तक का अधिक उपयोगी पाठ यह नहीं कि उद्देश्य अपनाने से निश्चित बाजार प्रतिफल मिलेगा बल्कि यह है कि वित्तीय विश्लेषण में संबंधों, संस्कृति और विश्वास को गौण मानना अधूरा है। पाठक को दिए गए आंकड़ों को प्रेरक संकेत मानना चाहिए, न कि कारण और परिणाम का निर्विवाद नियम। निष्कर्ष में यह पुस्तक मुख्यतः वरिष्ठ नेताओं, उद्यमियों, प्रबंधकों, मानव संसाधन और ब्रांड रणनीति से जुड़े पेशेवरों तथा व्यवसाय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से उन पाठकों को इससे लाभ होगा जो यह समझना चाहते हैं कि ग्राहक अनुभव, कर्मचारी सम्मान, नैतिक नेतृत्व और वित्तीय प्रदर्शन को एक ही प्रबंधन ढांचे में कैसे देखा जा सकता है। इसका व्यावहारिक लाभ किसी तैयार जांच सूची में कम और निर्णयों को देखने के बेहतर प्रश्नों में अधिक है। उदाहरण के लिए किसी लागत कटौती, वेतन नीति या आपूर्तिकर्ता समझौते से केवल तिमाही लाभ नहीं बल्कि भरोसे, सेवा और दीर्घकालिक क्षमता पर क्या असर पड़ेगा। पुस्तक की बौद्धिक ताकत यह है कि यह सामाजिक जिम्मेदारी को व्यवसाय के बाहरी दान कार्य तक सीमित नहीं करती। इसके बजाय यह व्यापार के मूल संबंधों और दैनिक संचालन में मानवीय मूल्यों की भूमिका पर ध्यान देती है। इसी कारण यह सामान्य प्रेरक प्रबंधन पुस्तकों से अलग दिखती है। हालांकि इसे लागू करने के लिए संस्था को अपनी प्रोत्साहन प्रणालियों, नेतृत्व, व्यवहार और संस्कृति की कठिन समीक्षा करनी होगी। पुस्तक छोटे व्यवसायों के लिए भी विचारोत्तेजक है पर उसके प्रसिद्ध उदाहरण प्रायः बड़ी सफल कंपनियों से आते हैं, इसलिए स्थानीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलन आवश्यक है। अंततः फर्म्स ऑफ एंडियरमेंट उन लोगों के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार देती है जो लाभ को आवश्यक मानते हुए भी व्यापार की सफलता को व्यापक, टिकाऊ और संबंध आधारित मूल्य निर्माण के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं राजेंद्र सिसोदिया, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।